أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. दौरे कुरान 2025 डी क्यू 2025। आज इसमें से हम पारा नंबर 8 जुज 8 वलव अन्नना ये करेंगे। बहुत खूबसूरत पारा है और दुआ करूँगी पहले तो अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक दे। पूरी मोहब्बत दिल के नेक जज्बात महसूस करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। نبي صلى الله عليه وسلم की जो मेहनतें थीं, जो कोशिशें थीं, जो एहसान थे, कैसे अंधेरों में वो एक रोशनी का चिराग बनकर आए कि आज हम उनको सिराजम मुनीरा के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला की एक सुन्नत लिख लीजिए, ख़ास तौर पे इस बारे में भी आपको दिखने वाली है कि जब इंसानियत बिल्कुल अंधेरों का शिकार हो जाती है, अंधेरे जब छा जाते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला उस वक़्त किसी भी नबी को भेजता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा ही तोहफा था कि जिसमें आपने वो चिराग जलाए, पहले खुद अपने आप को उस माहौल से दूर रखा जो गंदगी, जो खराबी, जो बुराइयां फैल चुकी थी, उनसे दूर किया, और फिर उसके बाद दूसरों को इसकी अवेयरनेस दी। आज भी करने के काम यही है। जितना ज्यादा आप पर मैं अंधेरों का शिकवा करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में ये हो रहा है, फलां ये कर रहा है, ये साजिशें हैं, ये कॉन्स्परेसीज हैं, फलां आ गया, ये कर गया, मुसलमानों पे जुल्म सितम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बातों से क्या होता है? मिसाल देखिए कि अगर इस जगह पे गंदगी हो, हर आने वाला के देखो गंदगी फैली हुई है, कोई के ये देखो कुर्सी इधर है, कोई कहता है कुछ, तो क्या फ़ायदा होगा? बल्कि जितना आप डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा क्यों आएगा। करें क्या, एक बंदा उठ जाए, हाथ में स्वीपर ले लें, झाड़ू ले लें, जो उसके पास अवेलेबल है, और इसको साफ करना शुरू कर दे, कुर्सियों को ठीक कर ले। बस 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तो ये कम अज कम आपका ये हॉल तो साफ हो जाएगा, बाकी जगह भी कोई कर ही देगा। बस लिखिए, आज आप पर मैं इस वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को अगर हकीकत में एक खिराज तहसीन देना चाहते हैं, एक दरूद का तोहफा देना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका क्या है कि जिस मकसद के लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपना सारा नफा नुकसान एक साइड पे करके, अपनी ज़ात को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने ख़ानदान, अपनी कमाई को, अपने घर, अपने किसी और दूसरे मामले को नहीं, दीन को अपना असल मामला बनाया। बस इस मामले को सामने रख लीजिए। और ऐसा प्यारा बच्चा जिस माहौल में पैदा किया जाता है, आजकल हम मोहम्मद अरबी के नाम पे आपकी ज़िंदगी की वो झलकियाँ देखते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की मोहब्बत से भी महरूम हुए। दादा ने आपको पहले से ज़्यादा मोहब्बत दी, और कुरान पाक की आयत सूरह दोहा की, अलम यजिद का यतीम अनफावा बाबा दादा का दौलन फहदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना था फरमाया, और आहे हक से बेखबर पाया तो सीधा रास्ता दिखाया। यह आयत बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप की आंखें बंद हुई तो आप अल्लाह की रहमतों से महरूम नहीं हुए। ये उसी का फजलो करम था कि आपको ऐसे दादा मिले जो आप पर माँ बाप की तरह मेहरबान थे, फिर ऐसे चचा मिले जिन्होंने कभी यतीमी का एहसास तक ना होने दिया। ये भी लिखे, आज भी कई बच्चे यतीम तो हो जाते हैं लेकिन उनको रिश्तेदारों से वो मोहब्बत नहीं मिलती जो कि आपको मिली। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दुनियावी सहारों में से एक एक सहारा अल्लाह ताला हटाता गया। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की नज़र में आप बेसहारा होते गए। ये जो आपने कभी लफ्ज़ सुना होगा कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, कुछ लोगों को गलती लगी कि आपका साया जमीन पे नहीं पड़ता, ये तो बेइज्जती है और ये तो बेअदबी है, हालांकि जो माथा खुद सारा वक्त सर झुका के जमीन पे रहे, तो ये क्या है, वो तो अल्लाह ने एक खूबी बयान किया सज्जद अमरुख का। तो वो साया ना होने को ये कहते थे कुछ लोग। मैं भी वल्लाह वाला मैं खुशगुमानी करती हूँ कि जिन लोगों में ये कॉन्सेप्ट है, हो सकता है उसके पीछे ये हो कि एक एक करके हर साया उठता गया। दादा का इंतकाल हुआ, अबू तालिब ने आपको अपने साये रहमत में लिया, ये आपके चचा थे, बाप ने अपनी मौत से पहले इनको आपका सरपरस्त बनाया था और वसीयत कर गए थे कि मोहम्मद का ख्याल रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी खैर ख्वाही में कोई कसर ना उठा रखना। यानी दादा ने आपके चचा को ये पैगाम दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफील हो गए। दादा की कई बीवियां थीं, इन बीवियों से 10 बेटे हुए। अबू तालिब ना तो भाइयों में सबसे बड़े थे और ना सबसे ज्यादा मालदार थे, फिर क्यों इनकी कस्टडी में दिया गया आपको? क्योंकि आप सबसे ज्यादा बाहिम्मत थे। ये लिखिए करजियस। अल्लाह अपने दीन के काम छोटे दिल वालों से नहीं लेता, छोटी छोटी बातों पे घबराने वालों से नहीं लेता, लेगा तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अल्लाह बड़े हौसलों वालों से लेता, बड़े दिल वालों से लेता है। शराफत में भी सबसे बढ़कर थे, तबीयत के बहुत ही नेक थे। फिर आपके वालिद अब्दुल्ला और वो दोनों सगे भाई भी थे, यानी माँ से भी और बाप से भी ये सगे थे। बकिया भाई जो थे ये दूसरी बीवियों से थे, तो इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बाप ने ये जिम्मेदारी उन पर डाली और उनको वसीयत कर गए। इसी तरह बाप की तरह अबू तालिब ने भी भतीजे को अटूट मोहब्बत दी, हमेशा अपने साथ रखते, सोते तो साथ लेकर सोते, कहीं जाते तो साथ ले जाते। आपके आगे ना इनको अपनी जान की फिक्र होती ना अपने बच्चों की। सवाल लिखिए, इनको आपसे इस कदर मोहब्बत क्यों थी? एक तो खून का रिश्ता, दूसरा आप वो दिन रात देख रहे थे कि ये बच्चा कोई खास ही बच्चा है, जिसके अंदर सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है, शराफत और पाकबाजी भी है। बात बात से जहानत का सबूत मिलता था, एक एक चीज सआदतमंदी और खुशबख्ती का पता देती थी। तो यहाँ नोट कीजिए कि हर बच्चा अपना नसीब लेता है, लेकिन अखलाक के साथ भी कुछ लोग प्यार लेते हैं। अरबी जुबान में एक लफ्ज़ है खुलुक, खलाक, ला खलाक लहुम कुरान की आयत में आता है कि उनका कोई हिस्सा नहीं होगा आखिर में। तो खलाक कहते हैं उस हिस्से को जो अखलाक की वजह से कोई ले ले। आप माएँ हैं अगर, तो 4 बच्चों में से हर बच्चे से आपको प्यार है, लेकिन एक बच्चा बड़ा ही मुअद्दिब है, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ही आजिज है, तो फिर उसके लिए तो दिल में गोशा है ना। ये था मोहम्मद अरबी के लिए आपके चचा के दिल में। आप चचा की कस्टडी में आए, 4 साल गुजर गए, जिस्म परवान चढ़ता रहा, अक्ल का दायरा वसी होता रहा और फितरी सलाहियतें उभरती रही। 12 साल के हुए तो जिस्म में मजबूती और तवानाई आ चुकी थी, अकल में गैर मामूली गहराई थी और जहानत तो बला की थी, रूह में बेपनाह अजमत और बुलंदी थी। आप कह सकते हैं कि आप में वुसअत भी थी और हमागीरी भी थी, ऑलराउंडर थे, एहसास और शऊर से पूरी तरह भरपूर थे। आप देखिए कि अभी आपकी उम्र ही क्या थी, अभी तो बालिग भी नहीं हुए, लेकिन पेशानी पर एक चमक थी जिसको आप कहते हैं ना इकबाल, देर से ही आता है इकबाल, बंदी का सितारा चमक रहा था। आप में गैर मामूली सलाहियत झलक रही थी और अजीबो गरीब कमालात जाहिर हो रहे थे। जो लोग भी आपके साथ रहते थे वो जरूर ये कहने और सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि ये बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है, और वाकई ऐसा ही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बड़े होते गए, अबू तालिब ये देख कर हैरान हो रहे थे, वो जिसको कहते हैं कि हैरत से उंगलियां दांतों में दबा रहे थे कि मैं इसको बच्चा कहूँ? नहीं, ये ना तो ना समझ बच्चों में शुमार होता है, और ये तो बचपन में ही बहुत बड़ा है। समझ बूझ रखने वाले बड़े बूढ़ों में जो शुमार हो ये बच्चा उसमें, लिहाजा वो बड़ी बेतकल्लुफी से हर तरह के मसाइल पर आपसे तबादला ख्याल करते हैं। घरों में ऐसा कोई एक बच्चा होता है ना, आप भी उस बच्चे से मशवरा करती हैं, हो सकता है आपके शौहर भी अपने किसी एक बच्चे से ज्यादा बात करते हो क्योंकि वो समझदार होता है। तो अल्लाह के नबी ऐसे ही थे, यानी अबू तालिब आपसे ऐसे बात करते जैसे कोई अपने बराबर के साथी से करता है। अब क्या हुआ, जब आपकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई, अबू तालिब ने शाम के तिजारती सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र दूर दराज का था और रास्ता बड़ा दुश्वार था, इसलिए आपको साथ ले जाने का ख्याल ना किया। कहने लगे आप इधर ही रहिए। लेकिन जब वो चलने लगे तो आम बच्चों की तरह आप भी उनसे लिपट गए कि मुझे साथ ले जाइए। बच्चों की आदत होती है, घर से जो भी निकलता है उसके पीछे, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, बच्चों को अच्छा लगता है बाहर जाना। तो अबू तालिब ने सोचा कि सफ़र तो दुश्वार है, लेकिन मेरा भतीजा भी तो समझदार है और मैं भी उसके बगैर खुश कहाँ रहूँगा, चलिए। और ये सोचकर वो बखुशी आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए। तजारती काफिला रवाना हो गया, काफिले में आप भी थे। रास्ते में आप जो कुछ देखते इस पे गौर करते, जो कुछ सुनते इस पे सोच और विचार करते, और सब कुछ अपने जहन में महफूज करते जाते। काफिला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, बहुत से शहरों में ठहरा और बिलाखिर शाम की सरजमीन में पहुंच गया। और वहाँ के एक मशहूर शहर जिसको आज आप में बसरा कहते हैं, वैसे किताबों में उसका नाम बुसरा है, यानी बुसरा में पड़ाव डाल दिया। वहाँ एक बहीरा नाम का राहिब रहता था। राहिब आप जानते हैं कि वो ईसाई जो रहबानियत अख्तियार कर लेते थे। घर के पास एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजर जब भी बुसरा पहुंचते वहीं पे ठहरते, यानी किस्म का रेस्ट हाउस था, और ठहर कर कुछ देर आराम करते और फिर उधर लेन देन होता, कारोबार करते। ये काफिला भी उसी जगह ठहरा और हर शख्स अपने काम में मसरूफ हो गया। कोई ज्यादा थका हुआ था तो बैठकर दम लेने लगा, कोई भूख से बेताब था तो दस्तरखान हिलाकर वहीं बैठ गया, कोई अपना तजारती सामान ठीक करने लगा, यानी एक नॉर्मल रूटीन पे जो कुछ होता है। और काम क्या था कि जल्द से जल्द हम अपने सामान को बेचें और वापस जाएं। इतनी ही बात हो रही थी अभी, कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा कि लोग अपने कामों में थके, एक कासिद आया, यानी एक शख्स बाहर से आकर बोला आप लोग बहीरा के यहाँ तशरीफ ले आए। उन्होंने खाने का इहतमाम किया है और आप तमाम लोगों को खाने की दावत दी है। लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, निगाहें गोया कि एक दूसरे से पूछ रही थी कि वो यहाँ कई बार आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहीरा ने कभी पूछा भी नहीं। आज ये क्या हो गया, आज कौन है हमारे साथ कि जिसकी वजह से हमें भी इतनी इज्जत मिल रही है, वो इतना मेहरबान है। खैर क्या किया, दावत कबूल की, सब लोग कासिद के साथ वहां पहुंच गए। हाँ लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, वो वहीं रह गए। आप अभी बच्चे थे और बहीरा ने सबका बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया, बोला भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ, तुम में से कोई भी रह ना जाए। अहले काफिला बोले हम सब आ गए हैं, हाँ एक छोटा लड़का भी साथ है, इसको वहीं छोड़ा है, यानी उन्होंने बच्चा समझकर आपको वहीं छोड़ दिया। बहीरा ने कहा नहीं, उसको भी बुलाइए, वो भी यही खाना खाएगा। इससे अब इनकी हैरानी और भी बढ़ गई कि ये तो खिलाफे मामूल दावत है, फिर भी ये इसरार है कि वो ये ना रहे वो ना रहे। खैर उन्होंने पूछा बहीरा बात क्या है, आज क्या है खास बात, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो बहीरा ने कहा कि आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए। मैंने सोचा कि आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो कर दूं, और क्या बात हो सकती है, यानी उसने एक अच्छी तरह से बात को टाल दिया। उन्होंने कहा नहीं बखुदा कोई बात ज़रूर है। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पे गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और तमाम मेहमान बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। जूं ही बहीरा की निगाहें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गई, वो जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना टुक टुकी लगाए आपको देखना शुरू हो गया। जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा उसको देखता है ना तो एक अजीब सी कैफियत होती है, दिल नहीं करता कि निगाहें बंद हो, लेकिन एक रोब और एक मरूबियत भी होती है। खैर उसने आपको बहुत अच्छा वेलकम दिया, सबने खाना खाया और इधर उधर फैल गए, कोई चहल कदमी कर रहा है तो कोई घूम रहा है, कोई गिरजा देख रहा है, कोई कुछ। उस वक्त जब आप जरा तनख्वाह हुए तो बहीरा आपके पास आया और बोला बेटे तुम्हें लात और उज्जा की कसम, उस दौर की बातें, जो कुछ पूछूं बतला देना। आपने फरमाया लात और उज्जा की कसम ना दीजिए, ये फितरत की पुकार थी। पिछला पारा याद कर लीजिए, वैजा समी रसूल तरा युनम तफीदु मिन अदब, सातवां पारा पूरा हमने फितरत के और इसकी तलब पे किया। खैर आज के पारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं अभी। खैर वहीरा ने कहा अच्छा खुदा की कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आपने कहा पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहिरा ने आपसे मुख्तलिफ सवालात किए, कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ आदात अखलाक के बारे में पूछा, और आप उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए कि मैं मोहम्मद को लेने आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहिरा ने पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। बहिरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो नहीं सकता। आपके बारे में बहिरा की मालूमात देखी तो अबू तालिब दंग रह गए, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो आपको मिलने से पहले ही जानता है। इन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा भतीजा है। तो बहिरा ने कहा, किसका बाप? फिर अबू तालिब बोले कि अभी ये तो माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। बहिरा ने कहा, तुमने सच कहा, यानी ऐसे लग रहा है कि वो उनकी बातों को वेरीफाई कर रहा है। अब अपने भतीजे को घर वापस ले जाओ और देखो इसे यहूद से बचाना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने देख लिया और जिस हद तक मैंने इसे पहचान लिया है, उन्होंने पहचान लिया, तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। फिर वो वापस चला गया, चेहरा खुशी और इत्मीनान से चमक रहा था, और जेरे लब वो ये कहता जा रहा था, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। क्या समझ आया? जिनसे अल्लाह ने कोई काम लेना होता है ना, अल्लाह ताला उनको पहले से ही कुछ ना कुछ सुझा देता है। तो ये थे मोहम्मद अरबी, जिनकी नस्ल, जिनकी कौम में से आप और मैं। कितना अपने ऊपर रश्क नहीं आएगा आपको? मुझे वो बच्चा जिसकी खूबियां बचपन में खुल गई, आज आप और मैं उनकी खूबियों को अपने अंदर लाए। और ये जो किरणें उभर रही थी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार खुलता जा रहा था, आज उम्मत मुस्लिमा को इसी की ज़रूरत है। याद रखिए कि प्यारे नबी का सिर्फ ये किरदार इस तरह का ही नहीं था, बल्कि अगर आप इस चीज़ को सामने रखें ना, तो ये बात तक बाकी रहा। आपकी जवानी बड़ी पाकीज़ा थी। तो आइए ज़रा अख़लाक़े नबी में से आज का टॉपिक, इमामुल अम्बिया की पाकीज़ा जवानी, थोड़ा सा देखें। और इसको इस बारे से बहुत रब्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी बड़ी मिसाली और हर किस्म की आलाइशों से पाक थी। जिस तरह आपका बचपन बड़ा खूबसूरत, मुनफरिद और निराला था, इसी तरह आपकी नौ उम्री यानी टीनेज का दौर भी बहुत उम्दा था। जिस माशरे में आप को अल्लाह ने उठाया, बिगड़ा हुआ माशरा था वो। दौरे जाहिलियत से अहले मक्का कितने ही गलत काम करते चले आ रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने आपको इन तमाम आलाइशों से महफूज रखा और अपने महबूब की मुकम्मल हिफाजत की। आप सब यहाँ दुआ कीजिए। आप वेस्ट वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात को, ईस्ट वाले भी सुन रहे हैं। बाहर जितनी मर्जी गंदगी हो जाए, अल्लाह हमारी नस्लों को साफ रखना, उनके नसब साफ रखना, उनकी निगाहें साफ रखना और उनकी इज्जतों की हिफाजत करना। तो एक वाक़या इब्नुल आसीफ ने नबी सल्लम के अखलाक और किरदार, जिसको आज मैं एक लफ्ज़ दे देती हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट है ये। नबी की जवानी कितनी पाक थी। इब्ने असीर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में भी बहुत पाक थे। राग रंग की महफिलें, रातों को महफिलें सजना, फन और एंटरटेनमेंट के नाम पे अहले जाहिलियत वो सब काम करते थे जो आज भी है कमोबेश। तो अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि अहले जाहिलियत जो काम करते थे, मेरे दिल में दो दफ़ा के सिवा कभी इनका ख्याल तक नहीं गुजरा, मगर दोनों मरतबा अल्लाह ताला ने मेरे और इस काम के दरमियान में रुकावट डाल दी है। यहाँ अमल का नुक्ता लीजिए, अगर आपकी फितरत सलामत है ना, तो आप इरादा भी कभी करेंगे ना गंदी चीज़, फोहश चीज़ या बेकार या कलामे दिल फरेब या कोई नाजायज चीज़ देखना, सुनना, बोलना, अल्लाह आपको उससे वैसे ही हटा लेगा। उस वक्त बिजली चली जाएगी, स्विच ही नहीं काम करेगा। कई दफ़ा अल्लाह इस तरह भी बंदे को गलत चीज़ों से बचा लेता है। और कहते हैं, फिर उसके बाद मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रिसालत से मुशर्रफ़ फरमा दिया। क्या पता चला, अल्लाह ने जिनसे अपने काम लेने होते हैं ना, उनकी जवानियों को पाक करता है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि अगर किसी यंग बच्चे ने ज़िंदगी में कोई गलत काम कर लिया, तो अब अल्लाह उसको चुन नहीं सकता। ये भी एक मौजू है। हज़रत मूसा से तो कत्ल ख़ता तक हो चुका था नबूवत से पहले। तो ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। कोई हिम्मत ना हारे कि अच्छा फिर हमने तो जवानी में बड़ा कुछ किया है, तो अब हम कैसे नेक हो सकते हैं? नहीं, अल्लाह ने दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। तो आप वाक्या सुनाते हैं कि वो दो मौक़ों में से एक मौका क्या था। कहते हैं कि मेरे साथ एक लड़का था, वो मक्का मुकरमा में बकरियां चराता था। एक रात मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बकरियों की देखभाल करना, मैं मक्का मुकरमा जाकर नौजवानों की किस्सा गोई की महफिल में शिरकत करता हूँ। किस्सा गोई को आज के दौर में आप कोई ड्रामा, कुरान, कुशामे, गजल कुछ भी कह लीजिए, कोई ऐसी चीज़, और वहाँ ये एंटरटेनमेंट बहुत आम थी। उसने कहा कि ठीक है, आप फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा रवाना हुआ। अभी मैं मक्का के पहले ही घर के करीब पहुंचा था कि बाजे की आवाज़ सुनाई दी। अब जरा बाजे बजवाने और बजाने वाले सोच लें। मैंने पूछा ये क्या है? मुझे बताया गया कि फलां शख्स की शादी है। जो ही मैंने बाजे की आवाज़ सुनने के लिए खुद को तैयार किया, अल्लाह ने मेरे कानों को बंद कर दिया और मैं वहीं सो गया। यानी इतनी झपकी आई कि मैं सो गया, और फिर सूरज की गर्मी से मेरी आंख खुली और मैं अपने साथी के पास पहुंच गया। उसने पूछा तो मैंने उसे पूरी तफसील बताई कि मैं तो वहां पूरी रात सोता ही रहा। यानी अल्लाह ने आपको सुला दिया, वो महफिल हो हुआ के खत्म हो गई और आपकी आंख फिर खुली। दुआ करें अल्लाह हमारे साथ ऐसा करें। दूसरे मुल्कों से टिकट कटवा के जाते हैं लोग शादी ब्याहों के लिए, और पता नहीं कितनी हुज्जतें अपने खिलाफ इकट्ठी करके लाते हैं सिर्फ इस नाम पे कि अब आए हैं तो मेहंदी में भी जाएंगे और उबटन में भी जाएंगे और महफिल गजल में भी जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या खुराफात लेकर अपने ऊपर एक पटारा लेकर गुनाहों का आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे हर गुनाह की महफिल से दूर रखना, चाहे मेरे भाई के घर शादी है, मेरी बहन के, मेरे अपने बच्चों की है। मैं साफ कह दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसमें। यही असल में ऐलान बरात होता है। इसी तरह दूसरा वाक्य, आप कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से वही बात कही पहले की तरह और मक्का मुकरमा गया, फिर इस रात की तरह का वाक्य दोबारा पेश आया और उस रात भी आप सोते रह गए। अल्लाह ने आपको अपने फजल करम से इन तमाम लग्वियात से महफूज रखा। आपने इरशाद फरमाया कि इसके बाद फिर कभी इस किस्म की मजलिस में जाने का इत्तफाक या इरादा नहीं हुआ। तो आपके मेरे लिए आज एक अखलाक का और किरदार का एक अच्छा सा नुक्ता, करेक्टर सर्टिफिकेट का एक पॉइंट क्या है कि जिनकी जवानियां पाक होती हैं अल्लाह ताला उनसे बड़े काम लेता है। तो यहाँ हम आज के इस पूरे पारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत एक शरीफ इंसान के देखेंगे। शराफत, अजीम भी थे और शरीफ भी थे। आपको अल्लाह सुबहान तआला ने एक ख़ास किस्म की शराफत दी थी, बचपन भी इसका गवाह था और जवानी भी, और अल्लाह मुझे आपको भी पाकीज़ा कर दे। अगर पिछली ज़िंदगी में हमसे कुछ हो गया है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अब चलते हैं पारे पे, पिछले पारे से रब। पिछले पारे की आखिरी आयत क्या थी? वनुकल्लिबु अफ़ीदतहुम वअबसारहुम कमा लम यूमिनू बिही अव्वल मर्रा वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और हम उनके दिलों और उनकी आंखों को पलट देते हैं, फेर देते हैं, क्योंकि वो पहली दफा ईमान क्यों नहीं लाए, और हम उनको उनकी सरकशी में भटकना छोड़ देते हैं। तो क्या पता चला? जब हिदायत की पुकार बार बार बंदे के कानों तक पहुंचे और इंसान उसके ऊपर कान ना लगाए, तो फिर वो पॉपअप जो होता है ना, वो वापस चला जाता है। कंप्यूटर की जुबान में आप देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं और एकदम कोई पॉप आता है, किसी भी तरफ से कोई विंडो आ गई, खुल गई, अगर आप उसको थोड़ी देर एंटरटेन ना करें तो वो बंद हो जाता है। हिदायत एक बड़ा गयूर मेहमान है, आपके मेरे दिल पर नॉक करता है टक टक टक, लेकिन जब हम उसको नहीं देख पाते, नहीं दिल का दरवाज़ा खोलते, तो फिर वो वापस चला जाता है, फिर वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह से आज के इस बारे में हम देखेंगे हक और बातिल का मार्का। यानी मेन थीम लिखिए, मरकजी मजमून क्या है? मार्का है हक को बातिल और शैतान की मुलम्मा साजी। सूरत के शुरू में ही इस पे बात होगी, जुल्फुल कौली गुरूरा पे, लेकिन यहाँ इतनी बात समझ लीजिए कि ये पारा भी बड़ा पुरमगज़ है, आपको डिस्ट्रैक्शन के बगैर सुनना पड़ेगा। चलते फिरते सुनेंगे तो बस वही बातें खाना पूरी हो जाएगी कि आपने एक बार और कर लिया, लेकिन अगर इसको आपने दिल पर लेना है तो इस पूरे पारे को लिखिए कि पिछले हिस्से में सूरत अला नाम के हमने देखा कि मक्का वाले बार बार नबी सल्लम से मोजज़ों की दरख्वास्त कर रहे थे, कोई हिस्सी मोजज़ा दिखा दें तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने इस 8वें पारे के शुरू में बता दिया कि ये झूठ बोलते हैं। अगर आप इनको कोई हिस्सी मोजज़ा, हिस्सी मरा जो महसूस किया जा सके, जो देख सके आंखों से, दिखा दिया जाए, हत्ता कि मुर्दे भी इनसे बातें करने लगते हैं, तो ईमान लाने वाले नहीं है। और अल्लाह ताला की एक सुन्नत भी नोट कर लीजिए कि मोजज़े दिखाकर, शोबदे दिखाकर ईमान नहीं लाता कोई भी, ये तो जबरदस्ती का ईमान हुआ। आप देखिए कि ये जो मार्का है हक़ो बातिल है ना, आदम और इब्लीस के बीच से शुरू हुआ। डे वन पे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, आदम बा मुकाबला इब्लीस, और फिर होते होते मूसा के मुकाबले में फिरौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद, और होते होते चिरागे मुस्तफ़ा के मुकाबले पे शरारे अबू लहब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माशरे में आँख खोली, हालांकि आप किरदार के इतने सच्चे साफ सुथरे थे, लेकिन कुफार ने आपके पैगाम को जब देखा कि ये तो हमारी पिछली सारी चीज़ों को छुड़ा देगा, ये भी ठीक नहीं, वो भी गलत है, ये बाप दादा गलत है, ये थे वो थे, तो लिहाजा वो ना मानने के 100 बहाने के नाम पे आपसे मुख्तलिफ मुतालबे करने लगे। कभी कहते सफ़ा पहाड़ सोने का बन जाए, कभी कहते यहाँ चश्मे फूट जाएँ, कभी कुछ कोई कुछ। अब अल्लाह के नबी ने सोचा कि अल्लाह ताला तो कर सकता है, पिछले हिस्से में भी हम पढ़कर आए हैं, तो अल्लाह ताला को चू के पता था। ये जुमला लिख लीजिए, कुफार की तरफ से मोजज़ों का मुतालबा और अल्लाह का मुसलसल इनकार, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला को मालूम था कि वो ईमान फिर भी नहीं लाएंगे, क्योंकि जिनको ईमान लाना होता है ना, वो मोजज़ों का इंतज़ार नहीं करते, वो तब अपने अंदर की पुकार पे लब्बई कहकर, समय नवादाना कहकर ईमान ले आते हैं, और बाहर के सहारे नहीं, अंदर के सहारों पे कोई भी दरख्त खड़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि निशानियों और मोजज़ों को देखकर लाया हुआ ईमान वक्ती होता है। अबू बकर सिद्दीक कौन सा मोजज़ा देखकर ईमान लाए थे? हज़रत खदीजा को कौन सा मोजज़ा आपने दिखाया था जिसकी वजह से वो ईमान लाई थी? नहीं, बाहर की चीज़ों को छोड़कर ऊपर, क्या आपके अंदर सेहत होगी ना तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, बाहर ऊपर जितना मर्जी रंग रोगन लगा भी ले, लेकिन वो खूबसूरती तो नहीं आएगी। तो यहाँ इस पूरे पारे के साथ साथ देखते जाएंगे कि जो लोग निशानियों को शर्त बनाते हैं, वो देख भी लें तो नहीं मानते, हत्ता कि उनसे मुर्दे भी कलाम कर लें। जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने एक मोजज़ा दिखाया था गाय के वाक्य में, मुर्दा जिंदा हुआ, आंखों से लोगों ने देखा लेकिन फिर भी नहीं माने। अल्लाह ने कहा फतत्माउ ना यू मिनु लकुम, ए नबी आपको क्या अब तमा रह गया पीछे कि ये आपकी बात मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो लिख लीजिए, रोशनी के साथ जिस तरह अंधेरा हमेशा से है, इसी तरह हक के साथ बातिल हमेशा से था, है और रहेगा, हत्ता कि दुनिया पूरी होगी और आखिरी मार्का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के मुकाबले पे होगा। बीच में इसी तरह से कुछ इनकी मिली भगत जो भी बातें वो होती रहेंगी, आज भी जब कोई हक बात लेकर उठेगा, ये भी सी लिख लें। शैतान का एक एजेंडा है, और वो नबियों के दरबार में क्या था कि लोगों को वक्त के नबी के खिलाफ कर दें, जैसा कि हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और किसी को कत्ल कर दिया, किसी को झुटला दिया, हत्ता के अल्लाह के नबी के रास्ते में जो 13 साल मक्का में रोड़े अटकते रहे, वो भी शैतानी एजेंडा ही था कि किसी तरह से ये पैगाम फैले ना। आज के दौर में शैतान का एजेंडा क्या है? बुराइयों को खुशनुमा बनाकर दिखाओ, हत्ता के अल्लाह के वजूद को भी चैलेंज करते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट? अमेरिका के डॉलर पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, ये पुराना नोट है, आज जो बने हाल से बात है वो क्या है कि इन गॉड वी डोंट ट्रस्ट, उनको अल्लाह पे एतबार नहीं। कभी साइंस का नाम लेकर, कभी कह लीजिए कल्चर का नाम लेकर, वो अल्लाह के वजूद का और उन चीज़ों का इनकार करते रहते हैं कि जिसको इस्लाम ने हमारे सामने पेश किया, शराब नेकियां खूबियां सूद की बातें ये सब कुछ है। तो ये आज के दौर में भी शैतान का यही एजेंडा है, ये बिल्कुल अब आपको मैंने शुरू किया, इतने शुरू कर दी है इसका, ताकि इधर ही बात आ जाए, जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज के दौर में शयातीन दीन का काम करने वालों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके पास हक होगा। देखिए इंसानों को तो वो यूज़ करते हैं, इंसान तो बेचारे कठपुतली हैं, इंसानों की तरह शयातीन में भी जिन होते हैं और शयातीन शर फैलाते हैं, तो वो कभी किसी हक वाले के खिलाफ बात करेंगे, ये किसी के एजेंट हैं, ये तो वो हैं, ये तो ठीक नहीं है। और अगर किसी में कोई कमजोरी हो सकती है, किसी में हो कि ना हो, उसको बदनाम करना शुरू कर देंगे। बस ये सारा कुछ इस पूरे पारे में पढ़ेंगे, हत्ता कि इस पारे के एंड पे अल्लाह ने पहली दफा पूरे कुरान में से इधर सूरत अल आराफ में अंबिया कराम और उनकी कौमों की कॉन्फ्लिक्ट और उनका जो आपस का प्रॉब्लम था उसको पेश कर दिया। और आज हम सब जिस दौर में हैं, इसके अगले दौर में बड़े खराबियां आने वाली हैं। आप सबको कहूंगी अपने बच्चों को 15 साल का होने से पहले कुरान तर्जमे और तफसीर से पढ़वा दीजिए, क्योंकि हर जगह वो आपसे नहीं पूछेंगे कि मामा अब क्या करूं और वो क्या करूं और ये क्या करूं। बच्चों को कुरान सिखा दीजिए, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। और इस पूरे पारे में आप देखेंगे मुशरिकीन की हर धर्मी दिखेगी शुरू में, फिर नबी सल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्लियाँ मिलेंगी, फिर मोमिन और काफिर की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि एक वो है जो नूर में रहता है और एक अंधेरों में रहता है। फिर इसके बाद महशर में सवाल जवाब होने वाले उनका जिक्र है। फिर उसके बाद मुशरिकीन के अकायदे बातिला यानी बातिल अकायद का तذکرہ। और उसके बाद फिर सूरज जब थोड़ी सी आगे खत्म होने की तरफ आती है तो मुशरिकीन की जाहिलाना रसूमात है, बेटियों को कत्ल करना और ये दूसरी चीजें, फिर मुशरिकीन का उसको रद्द करना है, फिर उनकी कुछ बुरी आदात। और उसके बाद फिर कुल तआलू महर्रम रब्बुकुम पे एक बड़ी कॉम्प्लीट आयत आने वाली है जिसमें पूरे इस्लाम की वो चीजें जो हराम है और डूज एंड डोंट्स का तस्कर आता है। और उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत का जिक्र है कि अल्लाह कैसे एक नेकी को 10 में बदल देता है। और सूरत के आखिर में कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हारी जीना मरना अल्लाह के लिए हो, तुम्हारी कुर्बानियां और तुम्हारी नमाजें अल्लाह के लिए हो। फिर इसी पारे में सूरत अल अराफ आएगी जहाँ शुरू में ही कुरान की बात है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसलियां दी जाएंगी कि डोंट वरी, ये कह रहे हैं कहने नहीं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर तराजू बर हक है, अमाल के तोले जाने की बात आएगी। और उसके बाद फिर किस्सों में से सबसे पहले आदम और इबलीस का किस्सा आएगा, और इसी तरह से कुछ शैतान की बातों के साथ लिबास और हिजाब का पहली दफा यहाँ तस्कर आएगा। पूरे कुरान पाक में तीन बुनियादी जगहों पे लिबास ड्रेस कोड की बात है, यहाँ पहली दफा यानी आप आम औरतों में एक औरत का लिबास कैसा हो उसकी बात आएगी। फिर लिबास का तकवा के साथ ताल्लुक क्या है, इंसान अपनी ताकत के मुताबिक तकवा को इख्तियार करे। फिर इसके बाद सहाबे आराफ की बातें और जिसके नाम पे सूरत है, फिर तौहीद के दलाइल, और उसके बाद पांच अम्बिया कराम। इस बारे में आखिर में हम पांच अम्बिया कराम और उनकी कौमों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पढ़ेंगे। अब मेरे लिए इतना कुछ सुनने के बाद बस आप तर्जुमे को सुनकर बहुत कुछ समझ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। आइए आयतों के साथ चलते हैं।